नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरे से बचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की। हरियाणा में जीएसटी संशोधित दरों से वाहनों की बिक्री बढ़ी। कुरुक्षेत्र में प्रशासन व पुलिस ने पिपली के समीप बिना अनुमति के चल रहे ढाबे को जमींदोज किया। और कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 23 क्विंटल मावे की खेप बरामद की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। श्री शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनएसजी देश में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी रहा है।
पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है।
इस कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये केंद्र आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में 6 जोन में एनएसजी के एसएसजी हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में प्रदूषण मुक्त 10 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। हरियाणा राज्य परिवहन हरियाणा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत ये बसें चलाई हैं। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों को लाभ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्री दीपावली तक इलेक्ट्रिक बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये बसें अलग अलग रूट पर चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए प्रदेश के 10 शहरों में अलग अलग सिटी बस सेवा डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण पूरा हो चुका है और यमुनानगर में पूरा होने वाला है। इन 10 शहरों में पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाला शामिल हैं। हरियाणा में जीएसटी की संशोधित दरों से वाहनों की खरीद में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। वस्तु और सेवा कर सुधार के प्रभाव को लेकर कैथल में डॉक्टर विनोद कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया।
मैंने हाल ही में एक गाड़ी बुक करवाई थी, उसमें जीएसटी के कारण गाड़ी की दरें ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दरों में कमी की, उसके तुरंत बाद मुझे गाड़ी की डिलीवरी मिली। इस बदलाव से मुझे करीब 2 लाख रुपए का सीधा लाभ हुआ है। जीएसटी में कटौती का यह निर्णय केवल मेरे जैसे खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के मध्य वर्गीय और कामकाजी वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया। आज के समय में जब हर व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा टैक्स दरों में कमी का यह कदम जनता को आर्थिक लाभ देना साबित हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों एवं ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र में प्रशासन व पुलिस ने आज ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिपली के समीप शिव गोरखनाथ नालागढ़ ढाबे को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि कुछ अरसा पहले ढाबे से बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद होने पर ढाबा संचालक रोशन सैनी व उसके साथ पकड़े गए तीन लोगों को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई थी। आरोप है कि ढाबा मालिक ने नशा तस्करी से कई करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। हरियाणा सरकार ढाबा संचालक की लगभग 10 करोड़ की संपत्ति पहले ही फ्रीज कर चुकी है। जिला नगर योजनाकार विक्रम कुमार ने बताया कि ये ढाबा बिना अनुमति के चल रहा था।
ये अनऑथराइज ढाबा है ना, इन्होंने अभी तक अप्लाई किया हुआ। 2012 से हम कंटिन्यू नोटिस दे रहे हैं इनको, 2012 में भी नोटिस है, फिर 14 में भी नोटिस है, 18 में नोटिस है, और कल हमने इनको वैकेंट करने का नोटिस दिया ताकि अपना ढाबा ये खाली कर ले। फिर भी इस मॉर्निंग में आके देखा तो इन्होंने खाली किया नहीं। तो हमारे साथ जो वर्कर है या हमारे मेरे ऑफिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ मिलकर इस ढाबे को खाली करवाया गया और अब तोड़फोड़ की कार्रवाई।
रोहतक में साइबर सेल में तैनात ASI संदीप ने आज खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। कहा जा रहा है कि उसने स्वर्गीय IPS अधिकारी Y पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप का खून से लथपथ शव लाढ़ोत धामड़ रोड पर एक मकान से मिला है। आज दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि संदीप का शव एक मकान में पड़ा है। DSP गुलाब सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी मृतक देह बरामद की। FSL माहिर डॉक्टर सरोज दहिया को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आज तड़के मावे की भारी खेप बरामद की। विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन चहल के नेतृत्व में तित्रम मोड़ स्थित राज होटल के पास एक बस पर छापेमारी की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 152 से गुजर रही एक बस को रोका गया। बस से करीब 23 क्विंटल मावा बरामद हुआ। बस राजस्थान के बीकानेर से चंडीगढ़ जा रही थी और इसमें 15 यात्री सवार थे। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जांच की जा रही है कि ये मावा किस व्यक्ति या तस्कर के लिए भेजा जा रहा था। विभाग ने बस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है और चालक व परिचालक से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पवन चहल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारों के मौसम के दौरान लगातार संदिग्ध खाद्य पदार्थों की ढुलाई पर नजर रखे हुए है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में बाल महोत्सव का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि 4 दिवसीय बाल दिवस समारोह में बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को 14 नवंबर को खेल मंत्री गौरव गौतम द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर ने बताया,
प्रत्येक वर्ष की बात है, इस बार हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से चिल्ड्रेन हेल्थ के उपलक्ष्य में पलवल डिस्ट्रिक्ट में आज महोत्सव का शुभारंभ माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा किया गया है। महोत्सव में अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगे। इसमें आज जो है क्ले मॉडलिंग है, ग्रुप डांस है, फर्स्ट ग्रुप का डांस है और साथ ही पोस्टर मेकिंग है। मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगी कि ये कुल 36 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें 5 साल से लेकर अंडर 18 का बच्चा परफॉर्म करता है। प्रत्येक ग्रुप में 4 ग्रुप बनाए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाकर उनके वितरण के लिए एक निश्चित समय सीमा निश्चित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरे से बचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की। हरियाणा में GST संशोधित दरों से वाहनों की बिक्री बढ़ी। कुरुक्षेत्र में प्रशासन व पुलिस ने पिपली के समीप बिना अनुमति के चल रहे ढाबे को जमींदोज किया और कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 23 क्विंटल मावे की खेप बरामद की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।